दिन भर तारीख 19 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मुंबई में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद हुई 53, बाकी लड़ रहे हैं अस्पतालों में जिंदगी की जंग।
दारू पी के उसमें कुछ बहुत लोग एडमिट हो गए यहाँ पे, उसमें से मेरा बाप भी एक है, शहर घूम रहा बोलता।
भारी बारिश के चलते मुंबई का जनजीवन है ठप। विवेचना में याद करेंगे दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के अनजान पहलुओं को।
1947 और आज तक एक बहुत बड़ी कश्मकश रही है कि इस मुल्क की क़यादत कौन लिखेगा।
कार्यक्रम में खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। मुंबई में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इस मामले में 8 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक कर्ज संकट से जूझ रहे ग्रीस के बैंकों को आपात फंड देने के लिए राजी हो गया है। ग्रीस के कर्ज ने लौटाने की आशंकाओं के मद्देनजर बैंक से असामान्य रूप से उच्च स्तर पर हुई करीब 3 अरब यूरो की निकासी के बाद यह फैसला लिया गया है। बैंक में धन जमा करने वालों को डर है कि ग्रीस के दिवालिया होने की स्थिति में उनके अकाउंट यूरो से बदलकर राष्ट्रीय करेंसी में कर दिए जाएंगे। सोमवार को यूरोजोन के नेता ग्रीस कर्ज मुद्दे पर वार्ता करेंगे। इसी बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे ब्राजील्स के बजाय यहां आए हैं क्योंकि रूस ग्रीस का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। सिप्रास ने कहा कि यूरोपीय संघ को ग्रीस के साथ खड़े होने या खर्च में कटौती की कहीं न ले जाने वाली नीति में से किसी एक को चुनना है। बीबीसी के मॉस्को संवाददाता का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ग्रीस अपने कर्जदाताओं को यह जता रहा है कि उसके पास विकल्प हैं। हालांकि स्वयं खर्च में कटौती का सामना कर रहा रूस अपने दम पर ग्रीस को कर्ज संकट से बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है, सिप्रास ने कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम तूफान के केंद्र में हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम समुद्र के नजदीक रहते हैं और तूफानों से नहीं डरते, ना ही हम खुले समुद्र से डरते हैं और ना ही नए समुद्रों से। हम नए समुद्रों में जाने के लिए तैयार हैं ताकि नए सुरक्षित बंदरगाहों तक पहुंच सकें। ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास के शब्द। इसी फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद पश्चिम के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों ने रूस को आयात की जगह स्थानीय उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन रूस को खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन में पुलिस एक व्यक्ति की मौत की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह व्यक्ति एक विमान के निचले हिस्से से गिरा है। उसका शव पश्चिमी लंदन की एक दुकान की छत से मिला है। माना जा रहा है कि यह व्यक्ति जोहानसबर्ग से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर आ रहे एक विमान के पहियों में छुपा था। पता चला है कि एक अन्य व्यक्ति विमान के पहियों में बेहोश मिला है। सितंबर 2012 में अंगोला का एक व्यक्ति लुआंडा से हीथ्रो आ रही एक उड़ान से पश्चिमी लंदन की सड़क पर गिरकर मर गया था। चीन ने तिब्बत की सभी 1800 मोनेस्ट्रियों में टीवी और रेडियो लगाने का अभियान पूरा कर लिया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे भिक्षुओं और ननों में सरकारी नीतियों की समझ बढ़ेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूँ मोहनलाल शर्मा। अक्सर भारत के राज्यों से कभी जहरीली शराब और इसे पीकर मरने वालों की घटनाएं सामने आती रहती हैं, कभी बिहार से तो कभी उत्तर प्रदेश से। इस बार ये कहानी दोहराई गई है महाराष्ट्र में और वहां पर राजधानी मुंबई में। मुंबई में जहरीली शराब पीने वाले जो लोग मरे हैं इससे उनकी तादाद बढ़कर 53 हो गई है। कई गंभीर हालत में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक 25 से 30 साल की उम्र के कुछ युवक बारिश का आनंद लेने के लिए कल शाम अक्सा बीच गए थे। वहां उन्होंने एक दुकान से देसी शराब खरीदी और इसको पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता धनंजय कुलकर्णी से और जानकारी मांगी सलमान रावी ने।
इस मामले में तीन लोगों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है, उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड 26 तारीख तक ली है। और जो वहाँ उस पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर है और उनके सहित और 7 पुलिस वाले उनको सस्पेंड कर दिया है।
मतलब टोटल कितने हुए पुलिस वाले जो सस्पेंड?
8-8।
इसमें वो जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिन पाटिल जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि ये उनके उनको भी किया है क्या?
बराबर है, उनको सस्पेंड किया है।
कि ये जो बेचरा था जिसमें आपने पकड़ा है, एक जो जो लोगों को पकड़ा है, ये सरकारी लिकर बेचते थे ऐसा इन्होंने दावा किया था, क्या ये सही
बोल रहे थे वो? लेकिन वो बाद में तपास में सब निष्पन्न हो जाएगा कहाँ से आ रहा है क्या कर रहे हैं
जी,
अभी तक वो कुछ कंक्लूजन पे नहीं है।
तो क्या ये बहुत दिनों से इस तरह से काम कर रहे थे ये लोग या अभी शुरू किया?
पता करना पड़ेगा, अभी पता करना पड़ेगा, बहुत टू अर्ली हो जाएगा इसके ऊपर कमेंट करना।
23 जो लोग हैं इनमें कितने लोग ज्यादा सीरियस हैं और कितने लोग जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे?
12-13 लोग क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे।
ये लोग सब लोकल वहीं के आसपास के रहने वाले या दूर दूर के?
लोकल लोकल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं,
वो उसी एरिया में जहाँ पे ये बेचता था उसके आसपास।
ये थे मुंबई पुलिस के प्रवक्ता धनंजय कुलकर्णी। और जहरीली शराब पीने वाले जो लोग हैं उनमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। जैसा कि हमने की बताया आपको, गंभीर रूप से बीमार कुछ लोगों को अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। ऐसे ही एक अस्पताल में जा पहुंची हमारी सहयोगी चिरंतना भट्ट।
मैं अभी कांदीवली वेस्ट में आए हुए शताब्दी हॉस्पिटल में हूँ। इस हॉस्पिटल में जहरीली दारू पीने की वजह से जो लोगों को असर हुआ है उन लोगों को एडमिट किया गया है। 23 नंबर के वार्ड में उन लोगों को एडमिट किया गया है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे पुलिस वाले भी हैं और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी भी है। हॉस्पिटल का स्टाफ किसी को भी पेशेंट के साथ सीधी बात करने की परमिशन नहीं दे रहा है। पेशेंट के रिश्तेदार भी हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी भी है और पुलिस वाले भी हैं। बीबीसी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी पेशेंट से या किसी रिश्तेदार से वो बात कर पाएं, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपना नाम न बताने के शर्त पे हमसे बात करते हुए कहा, काफ़ी पेशेंट जो जहरीली दारू पीने की वजह से जो बीमार हो चुके थे वो आए हैं। ज़्यादातर पेशेंट ICU वार्ड में हैं, जिनकी हालत अब मध्यम है, उनको कहीं और एडमिट किया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी मेडिकल ऑफिसर से बात हो जाए, जो कि मुश्किल लग रही है। हॉस्पिटल के एक दूसरे स्टाफ ने हमें बताया कि इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। आप हमें बताएं कौन आपका यहाँ पर एडमिटेड है?
मेरा बाप है।
क्या हुआ था?
वो दारू पी के उसमें कुछ बहुत लोग एडमिट हो गए यहाँ पे, उसमें से मेरा बाप भी एक है।
क्या हालत है अभी उसकी?
उसको उसको मतलब सर घूम रहा बोलता है और उसको आँख को नीला ये सब हो रहा है। उसको
आँख का नील नीला आ रहा है, वो बराबर कान नहीं करता है। दारू पिया ना, दारू रात को पिया था, दारू पी के उल्टी किया, उल्टी करने के बाद उनको जब बहुत हाथ पाव हिलने के लगे, दारू पिया जब भी ऐसा हो।
दारू में बहुत लोग मर गया।
हमने एक पेशेंट के परिवार से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें बताया कि सस्ती दारू पी उसकी वजह से उनको उसके जहर की असर हुई, अभी वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया है।
ये थी हमारी सहयोगी चिरंतना भट्ट। तो मुंबई आज दो वजहों से चर्चा में है, पहली शराब कांड और दूसरी बारिश की वजह से ठप पड़े जनजीवन के चलते। भारी बारिश के चलते मुंबई के तमाम इलाके में जनजीवन ठप है। रेल की पटरियों पर पानी भरने के चलते लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुक सी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई नगर निगम प्रशासन ने शहर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है और नागरिकों से घर से न निकलने की अपील की है। समुद्र में तेज हवाएं चल रही हैं, मछुआरों को समुद्र से वापस बुलाया गया है। हमारी सहयोगी मधु पाल ने जायजा लिया एक इलाके का और वहाँ कुछ लोगों से बात भी की।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई के कोलाबा इलाके में। ये मुंबई का वो इलाका है जो सबसे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। दो दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते यहाँ का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेनें ठप पड़ी हैं और जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो एक या डेढ़ घंटे लेट चल रही हैं। जहाँ भी देखो वहाँ पानी ही पानी भरा है। मेरे साथ कोलाबा इलाके में कुछ लोग मौजूद हैं।
मेरा नाम सोनू है, श्री गणेश मूर्ति नगर में रहता हूँ मैं। काफ़ी कल से बहुत बारिश हो गई है, गली में बहुत पानी भर गया है, घर में पानी भर गया है, कहीं निकास ही नहीं है, जाने की प्रॉब्लम ही बहुत पड़ गई है। सब की सब आ रहे जा रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर पानी निकल नहीं पा रहा है।
मैं गणेश गोविंद सावंत बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे समस्या ऐसी है, दो दिन से ऐसे हो रहा है। कल तो पानी कम था, पर यहाँ पे कोई भी आ नहीं रहा है और यहाँ पे पानी बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अब तक यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई किसी ने कुछ किया भी नहीं है।
जैसे कि मैं आपके आसपास के एरिया में देख रही हूँ, लाइट नहीं है और पानी घरों में आ चुका है क्या?
घरों में पानी कमर तलक की ऊंचाई तलक पानी भर चुका है घरों में। यहाँ पे सबके घर भर चुके हैं। पानी निकालने की सुविधा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, ना ही कोई आया है।
जैसे कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे, मेरे साथ काफी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाए बारिश के चलते। आप आज स्कूल नहीं गए या घर से तैयार होके गए थे स्कूल के लिए?
नहीं गए थे, बारिश के वजह से कुछ सुविधा नहीं था।
आज आप स्कूल गए थे?
नहीं गए थे, गली में हमारे घर के इधर इतना सारा पानी भर गया है, घर में पानी भर गया है, इसलिए हम बारिश स्कूल नहीं जा पाए। सबका घर नुकसान हो गया और पानी भर चुके सारे।
हर बार, हर साल भरता है जब जब बारिश आती है, मगर यहाँ पे कोई नहीं आता, ना बीएमसी आती है, ना कोई आता है यहाँ पे, ना पुलिस आती है। मोटर है मगर ये कुछ काम नहीं कर रहा। हम लोगों ने अंदर से लाया मगर बीएमसी वाले ने किसी ने नहीं दिया और आप देख सकते हैं ऑपरेटर कोई नहीं है और एक खराब
के मोटर चलती नहीं है।
आप लोग आज, मैं देख रही हूँ सब यहाँ पे सारे जेंट्स यहीं पर हैं, तो आज ऑफिस भी नहीं जा पाए?
कैसे जाएंगे, घर के अंदर का पानी इतना भरा हुआ है, ऑफिस कैसे जाएंगे?
जैसा हमारा नीचे का घर है, हम रात के 2 बजे से सोए नहीं है और पानी रात के 2 बजे से भरा है यहाँ पर और अभी तक भरा है। अभी तक कौन ही गए नहीं, 28 आवर्स तो हो ही गए बारिश को यहाँ पर।
आपका नाम क्या है?
नीलेश भरा नंदगांवकर। सड़कों का हाल तो हर साल वही है, सरकार किसी की भी हो मगर सड़कों का हाल वही रहेगा।
आपका नाम क्या है?
सविता प्रसाद।
सविता जी, आप घूमने निकले हैं कि ऑफिस के लिए, ऑफिस से आ रही हैं?
नहीं, मुझे जाना था थाने मगर मैं ये बारिश की वजह से नहीं जा पाई आज। अगर मुझे अभी भी जाने मिले, बारिश रुकती है तो मुझे थाने जाना है, मेरे को अपने घर पे जाना है।
आपका नाम क्या है?
पूजा पांडे।
पूजा जी, आपको मैं देख रही हूँ, आप पूरी भीगी हुई हैं, कहाँ जा रही थी ऑफिस?
नहीं, मैं अभी फिलहाल तो घूमने निकली हूँ, पर मॉर्निंग में मैं ऑफिस गई थी लेकिन ट्रेन की वजह से कोई आ नहीं पाया तो ऑफिस की छुट्टी हो गई।
अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बारिश आपने हर साल आप देखती हैं कि इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश है?
नहीं, आई थिंक हर साल होती है, पर हाँ कल से कुछ ज्यादा है। ब्लॉकेज हुआ है, हाँ उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हो रहा है और मेन ट्रैवलिंग के लिए सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कोई अर्जेंट काम होता है तो उसके लिए जा नहीं पा रहे लोग।
मुंबई के स्थानीय लोगों से बात कर रही थी मधुपाल, जो कि बता रही थी कि किस तरह से भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
बीबीसी इंडिया बोल।
ललित मोदी कांड का दाग कैसे धोएगी नरेंद्र मोदी सरकार? 5 साल से फरार आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को बीजेपी नेताओं की कथित मदद पर राजनीतिक बवाल। क्या इस कांड के बाद भी बेदाग छवि का दावा कर पाएगी मोदी सरकार? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कार्यक्रम में अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। यूरोपीय संघ क्षेत्र के देश ग्रीस को कर्ज संकट से निकालने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रीस अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर संकट गहराता जा रहा है और पिछले हफ्ते ग्रीस के लोग अरबों रुपए बैंक से निकाल चुके हैं। इस पूरे वित्तीय संकट पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए अमल चौधरी से।
ग्रीस के बैंकों को यूरोपियन सेंट्रल बैंक अतिरिक्त आपातकालीन धन देने को तैयार हो गया है, हालांकि इसके बावजूद कर्ज में डूबे ग्रीस के संकट का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद यूरोपीय संघ क्षेत्र से जुड़े देशों के नेताओं का आपात सम्मेलन सोमवार को आयोजित किया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक ग्रीस में लोगों ने पिछले एक हफ्ते में बैंकों से लाखों यूरो निकाल दिए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंकों से करीब 2.1 अरब पाउंड निकल चुका है। गुरुवार को यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक में कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इस मौके पर स्पेन के वित्त मंत्री लुइस डे गुइडोस ने कहा,
ये मामला पिछली बार साल 2010, 2011 और 2012 में आई मुश्किल की तरह नहीं है। इस बार की परेशानी पूरी तरह अलग है। इस बार यूरोजोन का भविष्य तय होगा। इस बार दाव काफी ऊंचे हैं जो हम सभी को प्रभावित करेंगे,
स्पेन के वित्त मंत्री लुइस डे गुइडोस। वहीं फ्रांस के वित्त मंत्री माइकल सेपिन ने इसे एक ऐसी मुश्किल स्थिति करार दिया जिसका निदान जल्द से जल्द किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा,
सोमवार शाम को इस पूरे मामले पर यूरोजोन का एक सम्मेलन होगा जहां ग्रीस, यूरोप और यूरो के लिए फैसले लिए जाएंगे,
फ्रांस के वित्त मंत्री माइकल सेपिन। वहीं कई देशों का मानना है कि स्थिति को बेहतर करने के लिए ग्रीस को खुद भी कई कदम उठाने होंगे। काउंसिल के आर्थिक और वित्तीय मामलों के आयुक्त पियर मोस्कोविसी ने भी ग्रीस की सरकार से अपील की। उन्होंने कहा,
Il faudra prendre des décisions.
ग्रीस की सरकार से अपील करूंगा कि वो वार्ता करें जिससे समझौते की बेहतर स्थिति बनाई जा सके। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी होंगे।
काउंसिल के आर्थिक और वित्तीय मामलों के आयुक्त पियर मोस्कोविसी। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस ने माना कि उनके देश में बदलाव की जरूरत है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वो बदलाव कटौती के रूप में नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा,
We need reforms, not more cutbacks, not more parametric.
हमें बदलाव चाहिए ना कि कटौतियाँ। इसमें शक नहीं है कि हमें समाधान की जरूरत है। इसके लिए हमें बेगारी को खत्म कर पेंशन व्यवस्था में सुधार लाने के साथ जल्दी सेवानिवृत्ति के चलन को खत्म करना, पेंशन फंड धांधली पर रोक और रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे।
ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस के शब्द। अपने कर्जदाताओं से करार करने के लिए ग्रीस के पास अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। ग्रीस को कर्ज देने वाले देश चाहते हैं कि ग्रीस आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए अपने खर्चों में भारी कटौती करे, तभी उसे आर्थिक मदद दी जाएगी।
ये है ग्रीस का हाल, जो कि सुना रहे थे अमल चौधरी। 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं और 2 बार पाकिस्तान से निर्वासित की गईं बेनजीर भुट्टो का राजनीतिक जीवन उतना उतार चढ़ाव भरा रहा है जितना शायद किसी और का नहीं। उनकी वर्षगांठ के मौके पर रेहान फजल याद कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनजान पहलुओं को आज की विवेचना में।
1947 और आज तक एक बहुत बड़ी कश्मकश रही है कि इस मुल्क की क़यादत किसके हाथ में होंगे, इस मुल्क का तकदीर कौन लिखेगा, क्या इस मुल्क की क़यादत, इस मुल्क के वसाइल, इस मुल्क को फौजी हुकूमत चलाएगी।
एक इस्लामी देश के लोगों द्वारा चुनी गई पहली महिला प्रधानमंत्री की हैसियत से बेनजीर भुट्टो का इतिहास में अपना अलग स्थान है। अलग अलग लोग बेनजीर को अलग अलग नामों से पुकारते थे। कोई उन्हें शहजादी कहता था तो कोई पिंकी, मोहतरमा, बीबी या मिस साहिबा। ये अलग अलग नाम और उनसे जुड़ी छवि लोगों के दिल में भ्रम पैदा करती थी। पाकिस्तान में वो टिपिकल परंपरावादी महिला होती जो अपना सिर हमेशा ढके रखती और विदेशी मेहमानों से कभी भी हाथ नहीं मिलाती। लेकिन ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई के दौरान वो बदरंग जीन्स और टी शर्ट पहनती और कभी कभार व्हाइट वाइन का गिलास लेने से उन्हें कोई परहेज नहीं होता। ऑक्सफोर्ड में उनसे 2 साल सीनियर और ऑब्जर्वर अखबार के विदेशी मामलों के पूर्व संवाददाता और भारत के जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया के पुत्र श्याम भाटिया ने बेनजीर की उठा पटक भरी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है।
एक चमकदार सी थी, अगर ये कन्वे हो सकता है मीनिंग, फुल ऑफ लाइफ जो अंग्रेजी में कहते हैं। बेनजीर के कई दोस्त थे। खासी बात ये थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनके लिए एक मोटर खरीदी थी। हम लोग गरीब थे उन दिनों में, उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उनकी एक स्पोर्ट्स कार थी। तो बेनजीर कभी कभी ऑक्सफोर्ड में होती थी, ज्यादा तो ऑक्सफोर्ड में थी, वहीं तो स्टूडेंट थी, पर कभी कभी लंदन भी चले जाती थी अपनी गाड़ी में, दोस्तों को ले भी जाती थी कभी कभी हंसी मजाक में, चलो चलो लंदन देखो, फिल्म जाकर देखें, ये देखें, वो देखें। और अगर बेनजीर टेलीफोन पर नहीं मिलती थी, हम लोग ऐसे करते थे, मैसेज लिखते थे और उनकी मोटर कार के विंडस्क्रीन पर मैसेज छोड़ते थे, यानी कि बेनजीर मैं आपको आपकी तलाशी कर रहा हूँ, आप कहाँ हैं, ये मेरा नंबर है, मुझे प्लीज टेलीफोन कीजिए। बहुत दिलचस्प औरत थी वो, और दोस्तों की दोस्त, अंग्रेजी में क्या है जी लफज, लॉयल, दुश्मन उनके मेरे ख्याल कोई भी नहीं थे।
ऑक्सफोर्ड के जमाने की उनकी एक और दोस्त विक्टोरिया स्कोफील्ड बताती हैं कि बेनजीर ने ऑक्सफोर्ड के लेडी मार्गरेट हॉल से PPE यानी पॉलिटिक्स, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी।
She had very long hair and looked sort of, well, very informal. I think she was wearing blue jeans at the time.
उस जमाने में उनके काफी लंबे बाल होते थे, वो असाधारण दिखती थी। उस समय वो एक साधारण छात्र थी और ये आभास कतई नहीं मिलता था कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति में चली जाएंगी।
लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो उन्हें शुरू से ही राजनीति में लाना चाहते थे। 1972 में जब वो शिमला समझौता करने भारत आए तो अपने साथ हार्वर्ड से पढ़कर लौटी 18 वर्षीय बेनजीर भुट्टो को भी लाए। मैंने कुछ साल पहले भुट्टो के पूर्व प्रेस सचिव खालिद हसन से बात की जो 1972 में शिमला आने वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे।
बीबी को मेरे चार्ज में था भुट्टो साहब ने रखा हुआ कि तुम उसका यू नो यूके पे आई ऑन हर और ये है कि किसी अखबार वालों से बात ना करे। और फिर वहाँ मैं बेनजीर को लेके गया, पाकीज़ा फिल्म दिखाई हमें, तो भुट्टो साहब नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा तुम बेनजीर को ले जाओ और किताबें कुछ खरीदी और माल रोड पे सैर की। तो मैंने 20-22 किताबें खरीदी और भुट्टो साहब का हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था जी, और कुछ एक दो किताब शायद उन्होंने कही थी, शायद पंडित जी की कोई किताब थी।
ऑक्सफर्ड के बाद भी श्याम भाटिया बेनजीर से लगातार संपर्क में रहे। बेनजीर ने उन्हें कई बातें बताई लेकिन उनसे वादा लिया कि वो उनके जीते जी उन्हें नहीं छापेंगे। सबसे सनसनीखेज बात यह थी कि वो उत्तरी कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम के बदले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सीडी लेकर खुद प्योंगयांग गई थी।
जब हम बैठे तो बेनजीर ने मुझे कहा कि देखो श्याम भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत ही सीक्रेट चीज, और जब तक मैं जिंदा हूँ इस बात को बिल्कुल किसी को बताना नहीं। तो मैं हैरान, मेरे कान खुल गए, मैंने कहा पता नहीं क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि देखो लोग कहते हैं कि मेरे पापा जुल्फिकार अली भुट्टो न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता थे, पर मिसाइल प्रोग्राम की जो माँ है वो मैं हूँ। मैंने और भी हैरानी से देखा कि क्या कह रही हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहानी बताई कि नॉर्थ कोरिया जा रही थी, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल डेवलप किया था नोडोंग, और नॉर्थ कोरियन की जो सरकार थी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चाहते थे। सो बेनजीर ने फैसला किया अपने इंटेलिजेंस चीफ और साइंटिस्ट बात करके कि न्यूक्लियर चीजें जिसको यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको सीडीज में डाल के अपने जेब में छुपा के वो स्टेट विजिट पर नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग चली गई। और नॉर्थ कोरियन की जो सरकार थी बड़ी खुश हुई कि देखो पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे लिए ये ले आई है सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट की, और उसके बदले उन्होंने बेनजीर को अपने नोडोंग मिसाइल्स की डिटेल दी है और वो बेनजीर साथ लेकर वापस आई। अच्छा एक और आपको मैं बात बताऊं, बेनजीर के एक बहुत सीनियर एडवाइजर हैं जो आजकल, जिनका नाम मैं अभी नहीं बताना चाहता, उनको मैंने ये कहानी बताई तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि देखो बेनजीर ने तो आपको सिर्फ आधी कहानी बताई, जब वो वापस आई प्योंगयांग से तो उसी हवाई जहाज में पूरा का पूरा नोडोंग मिसाइल साथ में लाई।
जब मैंने खालिद हसन से पूछा कि इस बात को आप कितना सच मानते हैं तो उनका कहना था कि आमतौर से प्रधानमंत्री इस तरह की सूचनाओं के वाहक का काम नहीं करते।
ये तो बड़ी टॉल स्टोरी है और ये तो खुद बेनजीर ने अपनी किताब में लिखा है और खुद उसने कई दफा कहा भी कि हमने तो नॉर्थ कोरिया से डिजाइन लिया मिसाइल्स का, उन्हीं ने डोंग मिसाइल थी तो उसके पैसे दिए इन्होंने। एके खान ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया, तो ये जरा आउटलैंडिश सा क्लेम लगता है। बेनजीर ऑल्सो हैड ए सेंस ऑफ ह्यूमर, तो हो सकता है मजाक कर रही हो। फर्ज कीजिए कि नॉर्थ कोरियंस को कुछ देना ही था तो वो ये तो नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने हैंडबैग में डाल के ले जाएगी, ये तो कुछ डिप्लोमेटिक बैग के थ्रू ऐसी चीजें जाती है आमतौर पे जिसको खोला नहीं जाता। प्राइम मिनिस्टर्स डोंट नॉर्मली एक्ट एज कैरियर्स।
इंदर मल्होत्रा भी भारत पाकिस्तान के मामलों पर पैनी नजर रखते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि श्याम भाटिया मामले को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हों लेकिन इस पूरे मामले को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता।
इसमें कुछ बुनियादी सच्चाई जरूर है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी कुछ डिल्यूजनल थे, उनको भी आसार थे इस चीज के भाई वो तो अक्सर हो जाता है कि किसी वक्त आदमी जो है थोड़ी जिसको पंजाबी हम फड़ कहते हैं या वो शेखी बिखरता है कि मैंने ये कर दिया, तो उसमें थोड़ी सी एग्जेजरेशन हो सकती है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि फौज के साथ इनके ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे थे नहीं, और जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का उस पर फौज ने हमेशा पूरा कंट्रोल रखा है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुद्दा है इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पहले गई थी प्योंगयांग और उसके बाद 12-13 बार एक्यू खान जो उनके पाकिस्तान के सबसे नोटोरियस एटॉमिक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर में सीक्रेट बेचने की कोशिश की है उसके बाद वो गए। तो पहली विजिट में अब वो जेब में डाल के डिस्क ले गई कि नहीं गई, लेकिन ये बुनियादी बात यह है कि भाई आप हमको मिसाइल दे दीजिए और हम आपको यूरेनियम को एनरिच करने की टेक्नोलॉजी दे देंगे। अब इसमें श्याम भाटिया का कसूर नहीं है क्योंकि ये उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं कही और उसके कुछ महीने बाद पब्लिकली भी कहा और श्याम भाटिया को भी कहा कि मैंने ऐसी कभी बात नहीं की है, हमने कोई उनको सीक्रेट नहीं दिए हैं, हम तो सिर्फ उनसे मिसाइल खरीदी है और उसके पैसे दिए। तो ये मेरे ख्याल में श्याम भाटिया जो जर्नलिस्ट है और बहुत बड़े जर्नलिस्ट का बेटा है, जो उसने सीखा होगा इस कस्म की वो इन्वेंशन नहीं करेगा, और उसने तस्लीम किया कि बाद में बेनज़ीर ने इसको डिसोन किया।
श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में 1988 में राजीव गांधी की पाकिस्तान यात्रा का भी जिक्र किया है। वो बेनज़ीर को ये कहते बताते हैं कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद को समर्थन न देने का फैसला लिया था, बदले में भारत को सियाचिन से अपनी सेना हटानी थी, लेकिन राजीव गांधी ये वादा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो अगला चुनाव हार गए। बेनज़ीर की दोस्त विक्टोरिया स्कोफील्ड याद करती हैं कि बेनज़ीर के जीवन का सबसे अधिक दुखदायी क्षण था उनके पिता से उनकी आखिरी मुलाकात।
I know that she went every week to see her father. She'd have one or two hours with him. It was absolutely traumatic for her.
वो हर हफ्ते अपने पिता से मिलने जेल जाया करती थी और उनके साथ एक दो घंटे बिताया करती थी। उनके पिता को 4 अप्रैल को तड़के फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक दिन पहले ही वो अपनी माँ के साथ उनसे मिलने गई थी। सबसे सदमे वाली बात ये थी कि उन्हें ये बताया नहीं गया था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अचानक भुट्टो ने जेल अधीक्षक से पूछा कि क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं। जब उसने हाँ में जवाब दिया तो बेनज़ीर ने कहा कि क्या आप जेल का दरवाजा खोल सकते हैं ताकि मैं अपने पिता को आखिरी बार गले लगा सकूं, लेकिन उन्हें ये अनुमति नहीं दी गई।
श्याम भाटिया ने बेनज़ीर के हवाले से एक और रहस्य उद्घाटन किया है कि 1979 में भुट्टो को फांसी देने के बाद उनकी सलवार उतारकर उनके गुप्तांगों की तस्वीर ली गई थी, ये जानने के लिए कि उनका खतना हुआ था या नहीं।
हम बातें कर रहे थे तो बेनज़ीर के आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मुझे सूचना आई है कि जब पापा की फांसी हुई उसके बाद फौजियों ने कहा कि इनकी सलवार नीचे करो ताकि देखें ये हिंदू हैं या मुसलमान। और रोते रोते बेनज़ीर ने मुझे कहा कि देखो पापा के मरने के बाद भी इन फौजियों ने उनकी इज्जत नहीं की। और बेनज़ीर को बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कहीं पढ़ा जुल्फिकार अली भुट्टो के जो इंचार्ज थे इन जेल में एक कर्नल रफी थे, और कर्नल रफी ने उर्दू में किताब लिखी है पाकिस्तान में जिसमें वो भी यही बात कंफर्म करते हैं कि फौजी ने मुझे कहा कि इनकी सलवार नीचे कीजिए और देखिए कि असली मुसलमान है या हिंदू है।
बेनज़ीर पाकिस्तानी विदेश सेवा में जाना चाहती थी लेकिन नियति उन्हें राजनीति में ले आई। दिलचस्प बात यह थी कि उर्दू जबान में उनका हाथ तंग था लेकिन अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। दुनिया में बहुत कम महिलाएं ऐसी थीं जो उसी सलीके और निपुणता से स्पोर्ट्स कार चला सकती थीं और पाकिस्तान के परंपरागत समाज में चादर भी ओढ़ सकती थीं। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
बेनज़ीर भुट्टो को याद कर रहे थे रेहान फजल। बांग्लादेश के खिलाफ कल पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मेजबान तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को कथित रूप से धक्का देने के मामले में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आज मैच फीस का 75% जुर्माना लगाया गया है। धोनी को आईसीसी आचार संहिता के तहत लेवल 2 के अपराध का दोषी पाया गया। ये घटना कल भारतीय पारी के दौरान की है जब मुस्ताफिजुर एक रन बनाने की कोशिश में दौड़ रहे धोनी के रास्ते में आ गए थे और रिप्ले से पता चला कि धोनी ने क्रीज तक पहुंचने की कवायद में उन्हें धक्का दिया था। कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
मुंबई में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ग्रीस के बैंकों को आपात फंड देने के लिए राजी हो गया है। इसी बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन संकट पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद पश्चिम के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। ब्रिटेन में पुलिस एक व्यक्ति की मौत की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि ये व्यक्ति एक विमान के निचले हिस्से से गिरा है। चीन ने तिब्बत की सभी 1800 मोनेस्ट्रियों में टीवी और रेडियो लगाने का अभियान पूरा कर लिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।